धवला पुस्तक 13 लेक्चर नंबर 17 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वर्चायाणं नमो लोए सौवसाऊणं मुनिसोऽयजिनवसहं सोऽय मुनिवसः सन्तु अम्नमिहुं कम्माणुयोयमिणमो आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम पर लिखी हुई है जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गणा खंड और उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 13 पुस्तक के पृष्ठ संख्या 127 पर आ गए 127। ये अपना कर्मानुयोग द्वार चल रहा है और कल हमने बहुत फिर रिवीजन पूरी की थी विस्तार से। हम मार्गणाओं में काल देख रहे हैं, जो हमने 6 काल देखे जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं सभी मार्गणाओं में, तो उसका काल कितना है। लेशा मार्गणा की बात चल रही
है, सामयिक छेदोपासना से परिहार विशुद्धि में जीव जाता है।
हाँ, सामयिक छेदोपासना से परिहार विशुद्धि में आता है।
करण परिणाम होते
हैं? ना ना ना, करण परिणाम परिहार विशुद्धि के लिए कोई करण परिणाम नहीं है।
विशुद्धि वहाँ पे जाता है परिहार
वो नहीं तो ना। हमने क्या देखा था, वो 30 साल तक घर में गृहस्थ सुखी जीवन बिताया, फिर मुनि दीक्षा ली, तीर्थंकर के पाद मूल में प्रत्याख्यान पूर्व का अभ्यास किया है विशिष्ट, तो विशुद्धि के बढ़ने से उनके परिहार विशुद्धि संयम की प्राप्ति हुई है। वैसे तो करण परिणाम ऐसे नहीं, परंतु वो बारम्बार शुद्धोपयोग तो है ही, यानी हमेशा छठा सातवां चलता है तो शुद्धोपयोग शुभोपयोग तो चलता ही रहता है, वैसा उनका भी चलता रहता है। नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। देखो, परिहार विशुद्धि का मिनिमम काल एक समय नहीं होता है, अंतर्मूर्त होता है, बस इतना ही ख्याल रखो। जैसे संयत में रहने का, भले ऊपर की गुणस्थान से नीचे आए तो भी संयत का संयत ही रहा, तो संयत का भी मिनिमम काल एक समय नहीं हो सकता। वैसे परिहार विशुद्धि का एक समय नहीं हो सकता, अंतर्मूर्त रहेगा ही रहेगा, बस इतना ही लेना। हाँ, मुनि होने के बाद परिहार विशुद्धि। अब यहाँ हम 127 पेज पर अपना लेशा मार्गणा का विषय चल रहा था। लेशा में हमने देखा था ना, एक एक लेशा का उत्कृष्ट काल हमको देखना है। जैसे कृष्ण लेशा का उत्कृष्ट काल, नील लेशा का तो नरकों में घटित होगा। अब भले वो अधक कर्म किसको होगा, मनुष्य तिरियंचों को कृष्ण लेशा में होगा, परंतु एक समय हो या कितने संख्या जीव है, कुछ भी हो, वो एक समय से पूरा असंख्यात लोक अधक कर्म का काल, अधक कर्म यानी वो छूटे वो परमाणु कितने काल तक उसी पर्याय रूप से रहते, उसकी बात है। उसमें ये अधक कर्म की विशेषता है, बाकी तो अन्य में तो हम सोच सकते हैं, है ना। तो हमने ये देखा था कि जो कृष्ण नील और कपोतलेशा का अपना अपना जो उत्कृष्ट काल है वो कैसे है, नरक की जो वहां उत्कृष्ट आयु है, सातवें नरक की, दोनों ओर एक एक अंतर्मूर्त बढ़ाना, क्योंकि जाने के पहले उसी लेशा में जाकर मरण होता है, अंतर्मूर्त तक एक समय की नहीं ले, और फिर आने के बाद भी वही होता है। दूसरी बात, जैसे हम क्रोध मान माया लोभ में या योगों में एक समय भी घटित करते हैं, वैसे लेशाओं में एक समय घटित नहीं होता है। वो उसमें ऐसा नहीं, वो तो गया और फिर वापस व्याघात हुआ, उसमें नहीं होता। एक समय में हो गई, पर एक समय के लिए पद्म रही। देखो हमने क्या घटित किया था कि क्रियाकर्म एक समय के लिए कैसे हो सकता है। हाँ ये नहीं, जो देखो देखो पीतलेशा में सम्यक तो प्राप्ति के अंत, यानी वो तो करण परिणाम चालू हो गए, तो बढ़ती हुई विशुद्धि से पीत से पद्म में पहुंचा, पर अंतर्मूर्त तो पीत में रहा, पर वो अंतर्मूर्त उसका करण लब्धि में बीत गया। और एक समय सम्यक तो उपशम सम्यक तो के काल में एक समय रहा और बाद में पद्म हुआ, वैसे पीत के लिए वो पद्म हुआ एक समय में, पद्म के लिए एक शुक्ल हुआ, पर शुक्ल के लिए शुक्ल ही रहेगा, शुक्ल के लिए वो एक समय वाली बात घटित नहीं होती। आप कहेंगे शुक्ल से पद्म में हमें आए उल्टा लाओ, परंतु वो बढ़ती हुई विशुद्धि है, उसमें शुक्ल से पद्म में नहीं आएगा।
नहीं,
जब यथायोग्य गुण संक्रमण का काल पूरा हो जाएगा, तब जब स्टेडी हो जाएगा, तब जाके उसके हीनादि को लेशाओं का पलटना होगा, उसके पहले नहीं। हाँ, लेशा में एक समय घटित नहीं होता है, मरण की अपेक्षा हो या व्याघात की अपेक्षा, वो होती नहीं उसके अंदर, ये इससे सिद्ध हुआ ना। अब तो कुछ
शुक्ल लेशा में जो जो करण परिणाम चालू करता है,
शुक्ल लेशा में करण परिणाम शुरू
तो
किया,
गुण संक्रमण कभी तक खत्म नहीं होता है, तब तक उसकी
शुक्ल लेशा की बढ़ती हुई विशुद्धि होगी। अभी उसका यथायोग्य जितना काल है उतना काल पहले वो शुरू करेगा, पहले पद्म में करेगा, ये हो सकता है। बढ़ती हुई विशुद्धि लेना है, बस इतना ही लेना है उसका, क्योंकि जो तीन करण परिणाम में तो विशुद्धि बढ़ती बढ़ती है, बाद में भी जो गुण संक्रमण का काल है उसमें भी
बढ़ती
हुई विशुद्धि है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो हमने कृष्णनील का वो देखा था क्रिया कर्म का, अभी हम पीत लेशा में देख रहे थे, तीन अशुभ लेशा की बात देखी, शुभ लेशाओं में क्या लेना, पीत लेशा का देवों में देखना, तो देवों में ढाई सागर अंतर्मूर्त कम, ये सौधर्म की उत्कृष्ट, यानी सौधर्म ईशान की उत्कृष्ट आयु है। जाने का पहला अंतर्मूर्त मिथ्या दृष्टि में बढ़ा सकते, वो तो मिथ्या दृष्टि हो या सम्य दृष्टि हो, जाने का पहला अंतर्मूर्त, परंतु आते समय अगर सम्य दृष्टि हो तो उसी लेशा में पीत के साथ मनुष्यों में आएगा, अगर मिथ्या दृष्टि हो तो एक समय में लेशा पलट जाएगी, इसलिए उत्कृष्ट काल के लिए हमको सम्यक्त के साथ लाना है। फिर क्रियाकर्म अगर हमको घटित करना है तो दोनों ओर का अंतर्मूर्त ले लेना, सम्यक्त के साथ गया, सम्यक्त के साथ आया। मनुष्य में आया तो अंतर्मूर्त में रहेगा, अंतर्मूर्त तक रहेगा, दोनों ओर अंतर्मूर्त बढ़ाया हमने, एक समय की बात नहीं की थी। हाँ, एक समय की बात वो बढ़ती हुई विशुद्धि में ही हो सकती है, वो क्रिया कर्म के लिए लागू हुई थी। अब तप कर्म का काल जो हमने लास्ट में पढ़ा था, देखो ऊपर से तीन तीन छः दो आठ, तप कर्म का काल कितना है, एक नाना जीव की तो हमेशा हमेशा होगा, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। तप कर्म में भी ऐसा ही लेना, तप कर्म संयमियों के होता है। अब वो जो पहले नीचे के गुणस्थान से सातवें में आया तो तप कर्म चालू हो गया, परंतु आया तो पीत के साथ बढ़ती हुई विशुद्धि के आया और एक समय में पद्म हो गया, जैसे क्रिया कर्म में लगाया था वैसे किसी एक लेशा में तप कर्म का एक समय पीत और पद्म में घटित होगा, शुक्ल में नहीं होगा।
तप कर्म का तो ऊपर जाने की अपेक्षा ही हो जाएगा ना, क्योंकि 14 गुणस्थान का तप कर्म है।
हाँ, तो
जो चौथे या पांचवे से जाएगा और एक समय के लिए,
वही तो कहा ना, नीचे से उसने संयम प्राप्त करके सातवें में आया है तभी उसका एक समय घटित होगा। इसी प्रकार शुक्ल लेशा में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि क्रिया क्रम का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है शुक्ल लेशा में, क्योंकि हमने देखा शुक्ल लेशा और कहीं बढ़कर अन्य कुछ नहीं होगी, उसका अंतर्मूर्त होगा ही। और उत्कृष्ट काल आदि और अंत के दो अंतर्मूर्त अधिक 33 सागर, ये काल हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब शुक्ल लेशा में ईर्यापद कर्म और तप कर्म का कितना काल है, वैसे पीत और पद्म में ईर्यापद होगा क्या, क्योंकि श्रेणी में शुक्ल लेशा और ऊपर भी है, 11वें 12वें में शुक्ल है, तो पीत पद्म में ईर्यापथ नहीं होगा। तप कर्मा तो हमने देख लिया, अभी शुक्ल रेशा में ईर्यापत का काल कितना है, तो नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय, क्योंकि शुक्ल रेशा में ग्यारहवें में आ गया, एक समय ईर्यापत हुआ और मरकर देव में गया। शुक्ल रेशा तो चालू रही पर ईर्यापत एक समय के लिए हुआ। तो जघन्य काल एक समय किसके लिए, ईर्यापत के लिए, और तप कर्म के लिए अंतर मोड़ते हैं, क्योंकि हमने देखा था ना शुक्ल में वो एक समय घटित नहीं होता जैसे पीत पद्म में हुआ था, क्योंकि वो बढ़ती हुई विशुद्धि में वो संयत हुआ और एक समय में वो पीत का पद्म हुआ या पद्म का शुक्ल हुआ, परंतु शुक्ल का शुक्ल ही रहेगा अंतर मूर्त। तथा उत्कृष्ट काल तप कर्म की बात है, कुछ कम एक पूर्व कोटि है। देखो ईर्यापत और तप कर्म और कुछ कम एक पूर्व कोटि, तो सब सतत शुक्ल लेशा रहनी चाहिए, तो ये कैसे होगा। हाँ शपक श्रेणी चढ़ी और फिर वो तेरहवें गुणस्थान में आ गया, तो केवली को भी ईर्यापथ और तप कर्म है, तो कंटिन्यूस कुछ कम पूर्व कोटि तक रहा। क्योंकि कोई देव या नारकी क्षायिक समय दृष्टि जीव पूर्व कोटि प्रमाण आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, वहां गर्भ से लेकर आठ वर्ष के बाद अप्रमत्त भाव से संयम को प्राप्त हुआ, तदनंतर प्रमत्त अप्रमत्त। देखो क्षायिक इसलिए क्योंकि उसका समय नीचे के गुणस्थान में और नहीं जाना चाहिए, संयमी यानी श्रेणी जल्दी चढ़नी चाहिए। संयमी होकर भी क्षायिक प्राप्त कर सकता था या चौथे पांचवे में भी कर सकता था, परंतु वो श्रेणी चढ़ने के लिए और समय लगता, इसलिए उसके पहले से क्षायिक वाला ही लाया। तो तदनंतर प्रमत्त अप्रमत्त अपूर्वकर अपूर्व क्षपक अनिवृत्ति क्षपक और सूक्ष्म सांप्रायिक क्षपक होकर क्षीण कषाय हुआ, यहाँ से ईर्यापत कर्म का प्रारंभ दिखाई देता है। और उसने अर्लीस्ट जब संयम धारण किया तब से तो तप कर्म शुरू हुआ था। तदनंतर संयोग केवली होकर जब तक पूर्व कोटि काल है तब तक ईर्यापत कर्म उपलब्ध होता है। इस प्रकार यानी अंतिम जो एक चौदहवे गुणस्थान का अंतिम अंतर्मुहूर्त छोड़ना, उसमें ईर्यापत नहीं है। इस प्रकार गर्भ से आठ वर्ष और अंतर्मुहूर्त न्यून एक पूर्व कोटि प्रमाण ईर्यापत कर्म का उत्कृष्ट काल उपलब्ध होता है। तप कर्म का काल भी इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि इसका गर्भ से लेकर आठ वर्ष कम पूर्व कोटि प्रमाण उत्कृष्ट काल होता है, क्योंकि आठ वर्ष में संयम के साथ ही उसने डायरेक्ट प्राप्त किया आठ वर्ष के बाद, यानी वो श्रेणी के लिए जो एक अंतर्मुहूर्त उसके कम लगा, ऐसा कहना चाहिए। साता वेदनी लगातार कितने समय तक बनती है अंतर्मुहूर्त?
छह महीना
उदय है उसका।
उदय
जो है सहस्र
लगातार, तो एक कुछ कम पूर्व कोटि का,
कुछ कम पूर्व कोटि
छठे गुणस्थान में,
छठे तर साता साता छठे तक है, सातवें में गया और श्रेणी चढ़ा और केवली हुआ, जो ये अभी घटित हुआ रहे ना वैसा ही होगा। किसके प्रकृति बंद और प्रदेश बंद के लिए होगा, पर स्थिति अनुभाग में वो तो अंतर्मूर्त की बात होगी। तप कर्म तो चौदहवें तक लिया है, नहीं किया, और शुरुआत में भी श्रेणी का अंतर्मूर्त वो भी कम नहीं किया। अब भव्य मार्गणा के अनुवाद से, भव्य सिद्धिक जीवों के सब पदों का काल ओघ के समान है, इतनी विशेषता है कि इनके काल का अनादि अनंत भंग नहीं होता। अभव्य सिद्धिक जीवों के प्रयोग कर्म और समवधान कर्म का समवधान ही लिखा है सब जगह काल नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा अनादि अनंत है। वो तो उनके कौन कौन से हो गए, अभव्य सिद्धि कौन के कौन कौन से हो गए, कर्म प्रयोग समवदान और अधक कर्म, वही एक समय से असंख्यात लोग, वो तो सबके लिए समान है। अभी सम्यक्त्व मार्गणा के अनुवाद से सम्यक दृष्टियों के सब पदों का काल अवधि ज्ञानियों के समान है, इतनी विशेषता है। अवधि ज्ञानी के तो हम 12वें गुणस्थान तक लिया था, तो उसमें इरियापथ का उत्कृष्ट काल तो अंतर्मूर्त लिया था, परंतु यहाँ हमारी मार्गणा कौन सी, सम्यक दृष्टि, तो 13वें वाले को भी इंक्लूड करना है इसमें। तो इतनी विशेषता है, इनके इरियापथ कर्म का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक बात, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि है। एक समय तो 11वें गुणस्थान की अपेक्षा लेना है। इसी प्रकार क्षायिक सम्यक दृष्टियों के भी कहना चाहिए इतनी विशेषता है कि क्रिया कर्म का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करके और अप्रमत्त गुणस्थान में दर्शन मोनी की क्षपणा करके सबसे लघु अंतर्मूर्त काल तक क्रिया कर्म के साथ रहकर जिस जीव ने अपूर्वकरण क्षपक पर्याय को प्राप्त, ये बराबर नहीं छपाए, प्राप्त होकर उसके प्रथम समय में ही क्रिया कर्म का अभाव कर दिया है, क्या कहते हैं, अपूर्वकरण में गया तो क्रिया कर्म का अभाव हो गया। फिर से ये पूरा फिर पढ़ते यहाँ क्या कहते हैं, इसी प्रकार क्षायिक समय दृष्टियों के कहना चाहिए, विशेषता बताना है उन्हें समय दृष्टियों से, इसकी विशेषता बतानी है। तो एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है और क्रियाकर्म का सामान्य सम्यक दृष्टियों में क्रियाकर्म का जघन्य काल कितना होगा,
क्रियाकर्म का जघन्य काल नहीं, सातवें में आया मरण होगा तो भी क्रियाकर्म तो चलेगा ना, चौथे गुणस्थान में
देखो देखो, क्रियाकर्म श्रेणी से उतरते हुए सातवें में आते ही एक समय में मर गए।
हाँ तो मर गया तो सम्यक दृष्टि रहा और चौथे गुणस्थान,
क्रियाकर्म रहा, एक मिनट, क्रियाकर्म का हमने देखा था, देखो इसमें
क्रियाकर्म का अंतर्भूत देखा था
नहीं, फिर यहाँ डिफरेंस क्यों बता रहे। क्योंकि देव में गया तो अभी क्रियाकर्म तो चालू रहेगा ना, अभिनिबोधिक ज्ञानी में क्रिया कर्म का जघन्य काल एक समय है। एक मिनट, कल हमने डिराई किया था उसको, पेज नंबर 125। नहीं नहीं, वो उसमें लिया था उन्होंने, मन परे में लिया था, मन परे में लिया था। इसमें तो जघन्य काल एक अंतर्मूर्ति लिया,
अंतर्मूर्ति लेना पड़ेगा।
मन परे ज्ञान में लिया था, क्योंकि मन क्रियाकर्म तो रहेगा देव में पर मन परिज्ञान नहीं रहेगा, इस तरह से उन्होंने वहां लिया था। अवधि ज्ञानी 124 पर है ना, जघन्य काल अंतर्मूर्त है, तो यहाँ डिफरेंस क्यों बता रहे हैं? फिर से यहाँ फिर आते हैं, यहाँ क्रियाकर्म का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, वहां पर भी था नहीं, कहाँ गई मैं, सॉरी अन्य पेज लिया मैंने, 128 पेज पर है। इतनी विशेषता है कि क्रियाकर्म का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है,
यहाँ पे ये बताया है कि अनंतानुबुद्धि की विषयता करके सपना की, तो उससे वो जो जीव अंतर्मुख के लिए समृत को प्राप्त करके मिथ्यात्व में जाएगा, वो जो जगने का
क्या 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 क्या
क्रिया कर्म चौथे गुण स्थान प्राप्त किया कोई जीव ने और वापस मिथ्यात्व में चला गया।
हाँ।
तो वो काल बड़ा होगा अरे छोटा होगा कि ये
ये काल इसलिए छोटा ले रहे हैं। देखो रेगुलर तो ये तो नीचे के गुणस्थानों में तो जाएगा नहीं,
नहीं नीचे के गुणस्थान
साइक समय दृष्टि है,
साइक समय दृष्टि बराबर है, पर मेरा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे साइक किया और वो सभी काल उसका क्रिया कर्म का लिया, तो जो जो मिथ्यात्व से सम्यक को प्राप्त करेगा और वापस मिथ्यात्व में जाएगा उसको मिथ्यात्व का उदय हो गया।
नहीं आप क्या बताना चाहते हैं, आप अल्पभूतव करना चाहते हैं?
नहीं ये जगन्य काल ये अपेक्षा से लिया, तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि चौथे गुण स्थान से जाके वापस मिथ्यात्व में जाएगा
वो तो सामान्य समय दृष्टियों में घटित हो गया।
हाँ।
अभी हम क्षायिक में घटित कर रहे हैं।
अच्छा क्षायिक में घटित कर, सॉरी
क्षायिक तो क्रिया कर्म के साथ ही आया था ना।
वो तो बराबर है मरण की अपेक्षा होगा।
हाँ वेद मार नहीं 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 वो बात नहीं है, ये छोटे में छोटा काल कैसे घटित करेंगे तो क्षायिक प्राप्त होते ही उसको ऊपर चढ़ाना है, ये छोटे में छोटे काल होगा फिर से क्षायिक लेके आया ऐसा नहीं जीव लिया, पहले में पहले जीव समय दृष्टि था, वेदक समय दृष्टि था, क्रियाकर्म तो चालू था पर वो तो वेदक समय दृष्टि था, क्षायिक नहीं था, तो उसने क्या किया अनंतानुबंधी का विसंयोजन किया तो भी उसको क्षायिक नहीं कहेंगे, फिर कृतकृत्य वेदक हुआ फिर भी उसको क्षायिक नहीं कहेंगे, इतने तक आ गया अभी। तो देखो अनंतानुबंधी की विसंयोजना से करके और अप्रमत्त गुण स्थान में दर्शन मुनि की क्षपना करके सबसे लघु अंतर्मूर्त काल तक क्रिया कर्म के साथ रहकर अभी क्षायिक और क्रियाकर्म, पहले क्रियाकर्म नहीं था वो बात नहीं पर पहले वो क्षायिक नहीं था, ये मिनिमम काल कैसे घटित करना है ये बात है, मिनिमम पॉसिबल काल क्षायिक में कैसे घटित करना, बिल्कुल ये चलो ले देखो ये या इसी प्रकार लिखा परंतु विशेषता ने उनका छोटे में छोटा अंतर्मूर्त कैसे घटित किया ये कहना। वैसे क्षायिक समय दृष्टि का उत्कृष्ट काल तो दोनों ओर पूर्व कोटि बढ़ा सकते हैं, वो तो सतत उस क्रियाकर्म में तो रहेगा ही रहेगा, हमें उसका मिनिमम काल क्रियाकर्म में कैसा बीतेगा, तो जब उसने क्षायिक प्राप्त किया तभी वो संयम ही था और संयम अवस्था में उसने वो तो यानी वो तो विसंयोजना की, अभी क्षायिक नहीं कहेंगे, फिर क्षायिक होते ही अप्रमत्त में क्षायिक कर दिया, क्षायिक पूर्ण होते ही अभी वो क्षायिक कहलाएगा और उसका क्रिया क्षायिक के साथ क्रियाकर्म हो, पहले क्रियाकर्म था पर उसको हम वेदक के साथ क्रियाकर्म कहते थे, अभी वो क्षायिक के साथ क्रियाकर्म हुआ और छोटे में छोटे अंतर्मूर्त में श्रेणी चढ़ा वो, ये बात हो रही है यानी अपूर्व करण क्षपक वगैरह होकर प्रथम समय में ही क्रियाकर्म का अभाव कर दिया, आठवें गुणस्थान में जाते ही क्रियाकर्म नहीं रहा, उसके क्रियाकर्म का जघन्य काल उपलब्ध थे, ये जघन्य काल कैसे घटित होता है उसकी बात है इसलिए वो विशेषता बताई।
यह साहित्य का पीछे भी स्वस्था प्रपत होगा और पीछे साथी से प्रपत होकर चढ़ेगा
वो सब उसमें वो सब लघु काल उसमें होगा, उत्कृष्ट काल अभी क्षायिक के साथ कुछ कम दो पूर्व कोटि अधिक 33 सागर है, हमने देखा था दोनों ओर पूर्व कोटि को बढ़ा देना क्योंकि कोई देव या नारकी वेदक समय दृष्टि जीव पूर्व कोटि प्रमाण आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, अभी उसको अर्लीएस्ट क्षायिक प्राप्त कराना है ना, पुनः गर्भ से लेकर 8 वर्ष के बाद अधकरण अपूर्व करण और अनिवृत्तिकरण इन तीन करणों को करके कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि होकर क्षायिक समय दृष्टि हुआ, तदनंतर एक पूर्व कोटि काल तक जीवित रहकर 33 सागर प्रमाण स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ, वो संयमी हुआ आयु बांधी वगैरह सब उसमें इंक्लूड है, तदनंतर पूर्वकोटि आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, तदनंतर पूर्वकोटि काल तक विहार करके सिद्ध हो गया। इस प्रकार प्रथम पूर्वकोटि के अधप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और कृतकरणीय संबंधी काल से अधिक, गर्भ से लेकर 8 वर्ष प्रमाण काल से न्यून, क्या कहा? क्रियाकर्म का उत्कृष्ट काल कितना है, उसमें से क्या क्या माइनस करना, उसकी बात है। यानी क्षयिक के साथ क्रियाकर्म कब शुरू हुआ? देखो, दोनों और दो मनुष्य भव है पूर्व कोटि के, तो पहले वाले भव में वो सम्यक तो लेकर आया था देविया नरके में से, अभी वहां 8 वर्ष के बाद उसने क्षयिक के लिए 3 करण परिणाम मान लिया, फिर वो कृतकृत्य वेदक होकर क्षयिक हो गया, यानी वो पहले के बाद करना पूर्व कोटि में से, फिर क्षयिक हुआ और उसी क्रियाकर्म चालू होगा, फिर देव में गया 33वां ग्रह, फिर आया मनुष्य में आया, और फिर वहां पर उसने संयम धारण किया, है ना?
तो भी अंत में संयम धारण किया, कृतत्व वर्ष के पहले
नहीं, पर ये यहाँ क्या लिखा है, पूर्व कोटि काल तक विहार करके सिद्ध हुआ, ऐसा क्यों लिखा?
वो कुछ
देखो, उन्होंने कैसे किया, प्रथम पूर्व कोटि के क्या क्या माइनस करना है, अधप्रवृत्त, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, कृतकरणीय संबंधी काल, ये सब मिलाकर जो अंतर्मूर्त अधिक, गर्भ से लेकर 8 वर्ष प्रमाण काल से न्यून, पूर्व कोटि में इतना न्यून किया,
2 कोटि
और दूसरी पूर्व कोटि में से क्या माइनस करना है, अपूर्व क्षपक, क्योंकि तब तक उसका क्रियाकर्म था, अपूर्व क्षपक, अनिवृत्ति क्षपक, सूक्ष्म सांप्राय क्षपक, क्षीण कषाय, संयोग और अयोग संबंधी काल से न्यून, 2 पूर्वकोटि अधिक 33 सागर प्रमाण क्रियाकर्म का उत्कृष्ट काल पाया जाता है। अभी पूरे 33 सागर है तो उसको तो जल्दी संयम धारण करेगा, फिर भी क्रियाकर्म रहा, उसने श्रेणी लास्ट में चढ़ी, ऐसा लेना, अंत में श्रेणी चढ़ी ऐसा लेंगे हम। इसी प्रकार प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का भी कथन करना चाहिए। बाकी इरियापद का तो हमने घटित किया था, अर्लीस्ट केवल ज्ञान प्राप्त होता है उसका होता है। वेदक समय दृष्टि जीवों के, अभी वेदक समय दृष्टि कहने से मनीषा बेन आपको मालूम है कौन से गुण स्थान तक वेदक समय दर्शन होता है, प्राप्त पाया जाता है कहाँ कहाँ, यानी वेदक सम्यक तो के गुण स्थान कौन कौन से है, ये मेरा प्रश्न। हाँ बोलो, चौथा, पहला, दूसरा, सम्यक तो चाहिए बात, मिथ्या तो की बात नहीं, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, और देखो श्रेणी चढ़ते समय तो वेदक सम्यक के साथ कोई नहीं चढ़ता, या तो द्वितीय उपशम से उपशम श्रेणी द्वितीय उपशम चढ़ेगा या क्षयिक चढ़ेगा, 4, 5, 6, 7 चार ही गुण स्थान है उसके, तो उसमें कौन सा कर्म नहीं होगा ये आप ही बताओ। क्रिया कर्म होगा कि नहीं
होगा,
तप कर्म होगा, हाँ, इरिया समझ में आई बात। हाँ देखो, ये हमको इस तरह से कुछ याद भी कुछ नहीं करना, रटना कुछ नहीं है उसमें, क्या नहीं? तो वेदक समय दृष्टि जीवों के प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और क्रिया कर्म का कितना काल है, तो मिनिमम रहने का काल कितना होगा वेदक सम्यक में और मैक्सिमम कितना होगा, ये बात हमको देखनी है। तो नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल अंतर्मूर्त, यानी कोई एक समय के लिए वेदक समय के दृष्टि रहा और फिर एकदम वेदक होकर क्षयिक हुआ एक समय में, ये तो नहीं होगा। और उत्कृष्ट काल कुछ कम 66 सागर है, यहाँ देशोन कहने से सबसे जगन्य क्षयिक समय दृष्टि संबंधी काल से न्यून काल लेना चाहिए, क्या कहते हैं? पूरा 66 सागर है वो कृतकृत्य वेदक सहित वाले वेदक का काल है, इसलिए हाँ उसको कृतकृत्य वेदक वहां तक बना रहता है, इसीलिए क्या कहा, यहाँ लिखा है चारित्र देशों ने कहने से सबसे जघन्य क्षायिक समय दृष्टि संबंधी काल से न्यून काल लेना चाहिए। अंतर्मूर्त कम देखो देशों ने कहने से क्षायिक के लेकर उसको छासर सागर पूरा हो जाता है, यानी जो पूरे छासर सागर तक रहता है वो क्षायिक होता ही है, ये कहना चाहिए। थोड़ा कम हो जाता है, अंतर्मूर्त ही होता है। जैसे पहले हमने देखा मिथ्यात्व का अंतर जब कहते हैं, अंतरण या मिथ्यात्व में नहीं ना ऊपर के गुणस्थान में, तो वहां हम दो छासर सागर लेते हैं, तो पहले छासर सागर में तो सम्यक मिथ्यात्व में लाया एक अंतर्मूर्त पहले, और दूसरे छासर सागर में तो हमने क्षायिक बना दिया। इस तरह से उसका अर्थ ले सकते हैं। इतनी विशेषता है कि चारित्र मुनि की क्षपण का काल छासर सागर से बाहर है ऐसा जानना चाहिए। चारित्र मुनि की क्षपण का काल है वो श्रेणी का क्षपक श्रेणी का काल। तप कर्म का कितना काल है वेदक समय दृष्टियों में? तप कर्म का यानी वेदक समय दृष्टि तप कर्म यानी संयम में रहना चाहिए, तो मैक्सिमम कितने काल तक रह सकता है संयम में? हाँ, क्योंकि 8 साल के बाद संयम धारण करता है और वह संयम ही रहा, श्रेणी नहीं चढ़ी, ऐसा लिए नाना श्रेणी भी चढ़ी तो तप कर्म तो रहता ही है उसका। तो नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि जो असंयत वेदक समय दृष्टि जीव परिणामों के निमित्त से संयम को प्राप्त हो जाता है और संयम में सबसे थोड़े काल रहकर असंयम को प्राप्त होता है, यानी चौथे से वो सातवें में गया और अंतर्मूर्त में छठा सातवां करके वापस आया नीचे, उसके तप कर्म का जघन्य काल उपलब्ध होता है। उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि है, क्योंकि कोई एक वेदक समय दृष्टि देव या नारकी जीव पूर्व कोटि प्रमाण आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, वो सम्यक्त्व के साथ ही उसको लाया है, फिर गर्भ से लेकर 8 वर्ष का होने पर संयम को प्राप्त हुआ। यहाँ कुछ कम वो खूब बराबर लिखो, कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण काल तक तप कर्म करके देव हुआ, इस प्रकार गर्भ से लेकर 8 वर्ष कम पूर्वकोटि प्रमाण तप कर्म का उत्कृष्ट काल उपलब्ध होता है। अब उपशम सम्यक्त सम्यक्त मार्गणा चल रही ना, तो मेरा प्रश्न है उपशम सम्यक्त का कम से कम काल और अधिक से अधिक काल कितना होगा? हाँ, और उत्कृष्ट कितने भव तक रहेगा? अंतर्मूर्त देखो उपशम समय दृष्टि जीवों के देखो, पर यहाँ एक बात है वेदक समय दृष्टि नाना जीव हमेशा रहेंगे, क्षायिक समय दृष्टि हमेशा रहेंगे, औषमिक समय दृष्टि ये सांतर मार्गणा है, उसमें गैप हो सकता है बीच में, कोई भी जीव उपशम समय तो में न रहे ये बात हो सकती है। तो देखो उपशम समय श्री जीवों के प्रयोग कर्म समवदान कर्म और क्रिया कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्ल के असंख्यात विभाग प्रमाण है, वो आपको 7 दिन रात है उसका अंतर है, यहाँ तो हमको काल देखना है, कोई एक जीव आया अंतर्मूत रहा दूसरा आया अंतर्मूत रहा, ऐसे आवलिक के असंख्यात भाग जीव आए तो उनका पल्ले का असंख्यात भाग घटित हो सकता है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि एक चारों गति का जीव यानी वो औषमिक समय तो चारों ही गतियों में प्राप्त हो सकता है, यानी चारों गति में से कोई भी एक जीव तीनों करणों को करके या पूर्व कर्ण अनिवृत्तिकरण और अधकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण उपशम समय दृष्टि हुआ, पुनः सबसे जघन्य उपशम सम्यक्त के काल के भीतर हमने देखा ना उपशम सम्यक्त का भी हीनाधिकाल हो सकता है, 6 आवली शेष रहने पर सासाधन सम्यक्त को प्राप्त हुआ, यानी उपशम संयुक्तों का काल और घट गया। पहले में पहले जघन्य अंतर्मूर्त लिया था, उसमें से भी छियावली कम कर दी। इस प्रकार सबसे जघन्य अंतर्मूर्त मात्र काल उपलब्ध होता है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। यहाँ उपशम समय दृष्टि का सबसे उत्कृष्ट काल लेना चाहिए उसके लिए। शंका, क्रियाकर्म का जघन्य काल एक समय ऐसा क्यों नहीं कहा? नहीं, क्योंकि उपशम श्रेणी से उतरे हुए उपशम समय दृष्टि का यद्यपि मरण होता है, तो भी यह जीव उपशम सम्यक्त के साथ अंतर्मूर्त काल तक रहकर ही वेदक सम्यक्त को प्राप्त होता है। यही कारण है कि उपशम समय दृष्टि के क्रियाकर्म का जघन्य काल एक समय नहीं कहा। वो भले देव में गया है द्वितीय उपशम के साथ, परंतु अंतर्मूर्त उसको लगेगा वेदक सम्यक्त के लिए। अब कहते हैं तप कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि जो मनुष्य, क्योंकि तप कर्म मनुष्यों में होगा, नाना जीवों की अपेक्षा नहीं, संख्यात मनुष्यों को लेना है। तो जो मनुष्य और ये उपशम सम्यक्त्व में घटित कर रहे हैं, सामान्य से अगर मनुष्यों में घटित करना है तो हमेशा होगे, क्योंकि मुनिराजों की उपलब्धि हमेशा होगी। यहाँ तप कर्म ने उपशम सम्यक्त के साथ जो संयम में है उसकी बात है, यानी जब प्राप्त किया मिथ्यात्व में से जब संयम प्राप्त किया तो हमेशा कोई जीव उसमें नहीं रहेगा, बीच में अंतर पड़ेगा। तो परंतु एक जीव तो अंतर्मूर्त रहा ही रहा, तो ऐसे संख्या जीवों के संख्यात अंतर्मूर्त हो गए,
वो भी अंतर्मूर्त हो
गए। तो देखो, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है। जघन्य काल कैसे होगा? अनेक जीव एट ए टाइम उपशम समय तो प्राप्त किए, अंतर्मूर्त काल बिताकर वेदक हो गए, फिर जब तक वो उसमें थे तब तक दूसरा उसमें नहीं आया है, ये हो सकता है। क्योंकि जो मनुष्य उपशम सम्यक्त और संयम को युगपत प्राप्त होकर, यानी उपशम सम्यक मिथ्यात्व में से वो डायरेक्ट सातवें में आए हैं उपशम के साथ, और अति लघु अंतर्मूर्त काल तक वहां रहकर छह अवली काल के शेष रहने पर सासाधन गुणस्थान को प्राप्त होते हैं, वे एक अधिक लोग लिए नाना जीव, उनके यह काल पाया जाता है। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, ये भी नाना जीवों की अपेक्षा बता रहे, नाना जीवों की अपेक्षा भी उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, क्योंकि परस्पर जुड़े हुए उपशम सम्यक्त के संख्यात कालों के ग्रहण करने पर उत्कृष्ट काल उपलब्ध होता है। परस्पर जुड़े हुए काल का अर्थ क्या है? किसी एक जीव ने उपशमिक सम्यक्त संयम के साथ प्राप्त किया, वो भले आगे वेदक सम्यक दृष्टि हो गया, फिर दूसरा जीव आया, फिर तीसरा आया, एक अंतर्मूर्त, दूसरा अंतर्मूर्त, ऐसे संख्यात जीव ने, क्योंकि उपशम सम्यक्त के साथ आए हुए चाहिए, इसलिए वो सब मिलकर एक अंतर्मूर्त होगा, ये तो उत्कृष्ट बात। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, वो तो नाना जीवों की अपेक्षा बताया था बड़ा। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल भी अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त। अब उसमें जघन्य उत्कृष्ट का थोड़ा डिफरेंस होगा। अब औपशमिक सम्यक्त्व में इरियापत कर्म का कितना होगा बताएंगे आप? जघन्य औपशमिक सम्यक्त तो द्वितीय उपशम है ना, ग्यारहवें गुण स्थान में
एक समय रहा।
तो एक समय और अंतर्मूर्त, एक समय से लेकर अंतर्मूर्त तक है, यानी जघन्य उत्कृष्ट। तो नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, यानी यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा भी वही कथन होगा, एक जीव की अपेक्षा वही होगा। हमारी सम्यक्त्व तो मार्गना चल रही, तो तीन प्रकार के सम्यक्त्व तो देखे अभी, सासाधन भी है, सम्यक मिथ्यात्व तो भी और मिथ्यात्व तो भी है। सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल क्रम से एक समय और अंतर्मूर्त, यानी सासाधन के लिए जघन्य काल एक समय और सम्यक मिथ्यात्व के लिए जघन्य काल अंतर्मूर्त, तथा उत्कृष्ट काल दोनों का ही पल्ले के असंख्यात विभाग, इसलिए दोनों को एक साथ लिया। यानी एक जीव आया उत्कृष्ट काल के लिए छह आवली तक रहा गया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, तो पल्ले क्या संख्या थी। समय मिथ्यात्व में भी ऐसा ही लेना है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्रम से एक समय और अंतर्मुख, यानी सासाधन में एक समय और समय मिथ्यात्व में अंतर्मुख, तथा उत्कृष्ट काल सासाधन का छह आवली और समय मिथ्या दृष्टि का अंतर्मूर्त है। हमने देखा था समय मिथ्या दृष्टि का जघन्य काल कैसे होगा और उत्कृष्ट काल कैसे होगा, अश्विन में बोलेंगे, दोनों ही अंतर्मूर्त है। तो उसमें जघन्य एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त कैसे घटित करेंगे और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त कैसे घटित
करेंगे,
चौथे से तीसरे में
नहीं,
उल्टा का देखो, या तो पहले से तीसरे में जाते हुए फिर चौथे में गया तो लघुकाल, या चौथे से तीसरे में होते हुए पहले में तो भी लघुकाल, परंतु पहले से तीसरे में जाकर वापस पहले में आना है तो दीर्घकाल होगा। पहले से तीसरे में गया और वापस पहले में आना
वो लंबा काल,
वो काल लंबा है, और पहले से तीसरे में जाकर तो भी लंबा काल लंबा, क्योंकि देखो चौथे से तीसरे महीने संकलेश में आया, फिर संकलेश में से थोड़ी विशुद्धि होगी तब चौथे में जाएगा,
रिवर्स हो जाएगा,
तो उसके लिए काल ज्यादा लगेगा। और संकलेश से तीसरे में आया और संकलेश बढ़ते बढ़ते पहले में गया तो काल थोड़ा लगेगा, ये हमने पहले पढ़ा था कहीं। मिथ्या दृष्टि के संभव पदों का काल मत्य ज्ञानियों के समान है। मिथ्या दृष्टि सम्यक तो मार्गणा का भेद है और मत्य अज्ञानी वो ज्ञान मार्गणा का भेद था, परंतु कथन वही होगा इसके। संगी मार्गणा के अनुवाद से संगी जीवों के सब पदों का काल पंचेंद्रियों के समान है। तो संगी में और पंचेंद्रियों में क्या भेद होगा, ये कर्मों में क्या भेद होगा, लघु लघु, क्योंकि विशुद्धि के साथ आया और विशुद्धि के साथ ही ऊपर गया वो काल लघु, और चौथे से संकलेश के साथ आया और संकलेश के साथ नीचे गया वो भी लघु, परंतु जहां से आया ऐसा नहीं, जहां से आया वहीं रिवर्स जाना है तो काल ज्यादा होगा, रिवर्स लेने में ज्यादा टाइम लगेगा, हाँ सीधा जाना है तो जल्दी जाएगा। तो मेरा ये प्रश्न था संगी में और पंचेंद्रिय में क्या डिफरेंस होगा, उनका सब कथन समान होगा कि नहीं होगा, संगी में और पंचेंद्रिय में क्या डिफरेंस होगा, नहीं नहीं
नहीं,
पंचेंद्रियों में अरिहंत भी आ गए तो इरियापद पूरा हो गया, और संगी में बारहवे गुणस्थान तक ही लेना है क्योंकि तेरहवे चौदहवे के संगी असंगी से रहित कहेंगे।
दूसरा भी असंगी पंचेंद्रिय भी पंचेंद्रिय में
आ गए, नहीं उसके उसमें उसमें डिफरेंस क्या पड़ेगा, ये प्रयोग कर्म इनमें डिफरेंस क्या, काल में क्या डिफरेंस पड़ेगा, ये बात है। ऐसे ऐसे भी पंचेंद्रियों का जो संगी में इरियापत होगा पर इरियापत अंतर्मूर से ज्यादा नहीं होगा, और पंचेंद्रियों में इरियापत कुछ कम पूर्व कोटि तक होगा,
और संगी में हम लोग समुद्रत भी ले सकते हैं, संगी में समुद्रत भी नहीं ले सकते, समुद्रत नहीं ले सकते,
वहाँ का हम प्रश्न है यहाँ पर
नहीं, वो
क्षेत्र और स्पर्शन थोड़े देख रहे हैं हमको क्षेत्र की याद आ गई। देखो संगी मार्गणा के अनुवाद से संगी जीवों के सब पदों का काल पंचेंद्रियों के समान है, इतनी विशेषता है कि इनके इरियापद कर्म का नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है और वहाँ कुछ कम पूर्व कोटि था। असंगी जीवों के एकेंद्रियों के समान भंग है, असंगी कहे से हाँ, क्योंकि पंचेंद्रिय में पंचेंद्रिय जो है मार्गणा उसमें अरिहंत भी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय जाति का उदय है ना उनका, हाँ
संगीत है इरियापद का और उत्कृष्ट काल को ग्यारहवें की अपेक्षा लेना पड़ेगा क्या बारहवें की।
हाँ अपन अंतर्मूर्त कहेंगे ना, ग्यारहवें का काल बारहवें से बड़ा होगा। उसमें वो अल्प बहुत अपना विषय नहीं है, अपना तो यहाँ तो अंतर्मूर्त इतना कथन है। असंगी जीवों के एकेंद्रियों के समान भंग है, एकेंद्रियों के समान भंग कहने से असंगी में रहने का काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन कहेंगे, उसकी अपेक्षा उसको एकेंद्रिय के समान कहा, क्योंकि यहाँ केवल काल को देखना है ना। आहार मार्गणा के अनुवाद से आहारक जीवों के सब पदों का काल ओग के समान है, इतनी विशेषता है कि अपनी स्थिति कहनी चाहिए। अपनी स्थिति यानी आहारक पने रहने का उत्कृष्ट काल कितना होगा? अंगुल का असंख्यात भाग, वो किसमें लगेगा?
संबोधन
प्रयोग कर्म और संबोधन में। बाकी तो सब इरियापथ तप कर्म वो सब जैसे ओघ में बताए वैसा रहेगा। अनाहारक जीवों के प्रयोग कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। अनाहारक में प्रयोग यानी चौदहवें वाले को अनाहारक वाले को नहीं लेना यहाँ पर। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है। यहाँ प्रयोग और समवधान अलग अलग लिया है ना। समवधान कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। वहाँ तीन समय लिया था, यहाँ समवधान में अयोग केवल ले लिया।
अयोग केवल लिया है,
समवधान में क्या लिया हुआ? अयोग केवल को क्यों लिया? सत्ता की अपेक्षा। हाँ अच्छा, हाँ उन्होंने क्या लिया था? सात या आठ कर्मों में बंध भी सत्ता भी और उदय भी तीनों अपेक्षा ली थी। सत्ता और उदय की अपेक्षा लेना।
यहाँ पे तो अयोग के लिए तो चार कर्मों की सत्ता है,
उससे क्या लेना देना है? सत्ता है
सात और आठ कर्म लिए इसलिए।
वो तो सामान्य से कथन है। देखो निकालो, जहाँ समवधान की चर्चा आई थी ना 38, 39 कहाँ पर होगी? 46 के आजू बाजू में होगी,
39 में होगा।
नहीं पर उसका विश्लेषण बाद में आया था, प्रयोग कर्म समवधान 45 पेज। भेद रूप से यानी उसमें केवल विभाजन ऐसा नहीं लेना, में है यह सभी बंध उदय और सत्ता के भेद से अनेक प्रकार का कर्म समवधान कर्म है। अनेक प्रकार के है, बस इतना ही लेना है। यानी वो केवल वो बंध की बात नहीं है, सत्ता उदय की भी अपेक्षा, तो यहाँ सत्ता उदय की अपेक्षा लेना है। यानी अनेक प्रकार के कर्म है, सत्ता की अपेक्षा अनेक प्रकार है। यानी यहाँ तो चार प्रकार तो है ही है ना। तो अयोग केवली गुणस्थान में प्राप्त होता है। 132 पृष्ठ। इरियापद कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल तीन समय है। ये केवली समुदात में लेना। वहां भी अनाहरक है ना, और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है, क्योंकि एक के बाद एक अन्य अन्य जीवों ने केवली समुद्घात किया है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल तीन समय है।
ये नाना जीव की अपेक्षा तीन समय बताया, वो जघन्य काल बताया, तो एक समय भी ले सकते
कैसे?
कार्बन का योग में चौथे गुण स्थान में
इरियापद
मैं क्रिया कर रहा हूँ सॉरी।
क्रिया कर्म की बात तो उन्होंने ली भी नहीं, यहाँ तो प्रयोग कर्म लिया, समवधान लिया।
हाँ प्रयोग कर्म समवधान और
क्रिया कर्म भी लिया नहीं है। अभी तप कर्म की बात पूछ रहे हैं। तप कर्म तो केवली को भी बताया है, तो तप कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की जगन नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल 3 समय है। अब यहाँ उत्कृष्ट संख्यात समय नहीं कहा, क्योंकि तप कर्म तो 14 वाले को भी बताया है। और उत्कृष्ट काल 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है उससे संख्यात गुणा, क्योंकि नाना जीव है ना, यानी एक के बाद एक 14वां गुणस्थान प्राप्त करने वाले जीव है, यानी नाना जीवों की अपेक्षा 14वां गुणस्थान। ये तप कर्म तो इसके भी है, केवली समुद्घात में अनेक जीवों ने एट अ टाइम किया, बस इतना है। तप कर्म 13वें 14वें को भी है। प्रतर, लोकपूरण और फिर प्रतर, कार्मण का योग है, अनाहरक है, अनाहरक रखना है उसको। देखो देखो, सामान्य से तप कर्म 6ठे से गुणस्थान से है, पर वहां तो आहारक है ना जी। अब यह अनाहरक कब होगा? जब कार्मण का योग है। प्रतर, लोकपूरण और प्रतर अवस्था में जीव अनाहरक होता है, यानी शरीर के परमाणुओं का वहां ग्रहण नहीं है, इसलिए उसको अनाहरक कहा। अनाहरक होते हुए भी तप कर्म तो है उसके, क्योंकि वो केवली भगवान है, एरियापद भी था, तप कर्म भी था। पर अनाहरक को उत्कृष्ट काल और तप कर्म जाहिर करने के लिए उन्होंने 14वां गुणस्थान लिया। तो एक जीव का 14वां गुणस्थान 5 लघु अक्षर अ उरुलु इतना कहने के लिए जितना समय लगता है उतना है। ऐसे एक जीव, दूसरा जीव, तीसरा जीव, संख्या जीव हो गए, तो उनके लिए ये बात बताए। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल, आप समझ में आई है? 3 समय की बात था। एक जीव की अपेक्षा जघन्य तो 3 समय है, और उत्कृष्ट काल 5 ह्रस्व, बराबर नहीं है, 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है उतना है। क्रियाकर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल 1 समय है। किसमें? अनाहरकों में। अनाहरकों में ये भूलना मत, यानी वो एक मोड़ लेके देव में गया, ऐसा जीव ले सकते हैं ना, क्रियाकर्म या कोई भी सम्यक्त के साथ अन्य पर्याय में गया है। और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है, क्योंकि सम्यक्त के साथ मर कर तीर्यंच देव में जाएंगे, असंख्यात जीव जाएंगे, तो वो आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण हो जाएंगे, क्योंकि बाकी तो कोई कहां से मरकर कहीं नहीं जाएंगे। नारकी इतने होते, परंतु वो मनुष्य में तो संख्यात आएंगे, देव मनुष्य में आए तो संख्यात आ जाएंगे, मनुष्य मनुष्य और तीर्यंच में जाएंगे तो क्षायिक वो संख्यात हो गए। तो तीर्यंच समय दृष्टि की अपेक्षा ये बात घटित हो सकती है। ये एक वाक्य रिपीट हुआ है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण, ये घटित नहीं होता, ये पूरा वाक्य निकाल दो। ये नाना जीवों की अपेक्षा एक जीव की, वो एक कॉम्बिनेशन वाला वाक्य बना है, ये पूरा वाक्य निकाल दो। हाँ वो बराबर है, ये निकाला हुआ है, पहले के पुस्तक में हमने इसको बाद किया था, उसके बाद वाला जो पुराने में है ये, उसके बाद का वाक्य सही है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल 1 समय है और उत्कृष्ट काल 2 समय है, क्योंकि 2 मोड़ से अधिक नहीं लगता उसको। अधः कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल 1 समय, यह करना, 1 समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है।
अनारत मार्ग ना चल रही है।
देखो, अनाहारक अयोगी जीवों के शरीर से विग्रह गति में कहाँ शरीर है, तो अनाहारक अयोगी है ना, तो उनके शरीर से परमाणु निर्जीर्ण हो रहे हैं। यह लिखा है, अनाहारक अयोगी जीवों के शरीर से जो औदारिक परमाणु निर्जीर्ण होते हैं, उनका यह जघन्य और उत्कृष्ट काल कहना चाहिए। इस प्रकार कालानुयोग, अधः कर्म किसको कहते हैं? औदारिक शरीर के जो परमाणु, जो स्कंध निर्जीर्ण होते हैं, और उसमें वो औदारिक शरीरपना के गुण पाए जाते हैं। हाँ, तो वो उसका सभी मार्गणाओं में हमने देखा था, कितना एक समय से लेकर असंख्यात लोग। तो यहाँ हमको अनाहारक कहने से हमको ऐसा लगता है, अरे विग्रह गति में तो शरीर नहीं है, उसका शरीर कहाँ से निर्जीर्ण होगा। तो कहते अयोगी के तो है ना, उसके शरीर के परमाणु तो छूट रहे हैं, उसकी अपेक्षा लेना। वही एक समय से असंख्यात लोग, वो भले चले गए मोक्ष में विलीन हो गए, तो परमाणु बिखर गए ना पूरे लोक में
औदयिक भाव के साथ बिखर गए,
और हर समय जा रहे हैं, वो अंतिम समय तो विलीन हो गए, वो तो आएंगे। वो परमाणु उसके स्कंद रूप से तो रहेगी कि नहीं रहेगी, उत्कृष्ट हो पर तो है कि नहीं है, उसको भी अधक कर्म उसको भी कहेंगे। परमाउदारिक भले हो बन तो है तो ना, औदारिक ही है वो, उसको उत्कृष्ट औदारिक कह दिया। अभी तो काल तो आसान था, अभी अंतर को देखना है अंतर का अर्थ पहले समझ लो। अब यहाँ अंतर ने प्रयोग कर्म का अंतर देखना है, और वो भी विशिष्ट मार्गणा में, यानी मार्गणा में रहते हुए वो नहीं हो और फिर हुआ। मार्गणा का अंतर तो आसान है, पर मार्गणाओं में वो कर्म का अंतर देखना है ख्याल में आती है ना बात, अभी हम देखेंगे। तो ऐसा कोई जीव होगा ना, प्रयोग कर्म का अंतर हुआ और फिर वो प्रयोग कर्म और समावधान भी नहीं होगा, क्योंकि जीव किस कर्मों की सत्ता तो है, और नहीं हो और फिर सिद्ध होकर कोई वापस नहीं आने वाला तो दोनों में ही अंतर नहीं होगा, एक जीव की भी और नाना जीवों की अपेक्षा भी अब यहाँ पढ़ेंगे देखो, अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ की अपेक्षा, प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना अंतरकाल है, कितने नाना जीवों की और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, निरंतर है, ये तो आसान है ना अभी समझने में। अधकर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, निरंतर है, क्योंकि हम अंतर है ना, अधकर्म ने जो परमाणु छूटे है वो रहेंगे ना, अरे एक जीव के असंख्यात लोग तक रहेंगे, तो नाना जीवों के तो हमेशा ही रहेंगे। एक जीव की अपेक्षा, अभी उसमें हम काल नहीं लेना है, अभी अंतर लेना है, जो सदा काल है उसमें अंतर नहीं है। अब एक जीव की अपेक्षा उसमें अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो फिर एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है, क्योंकि जो औदारिक नौकर्म स्कंध वो जीव से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका जघन्य काल एक समय देखा था और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोग देखा था। तो जघन्य काल एक समय जो देखा है, तो जो औदारिक स्कंध नौकर्म स्कंध औदारिक शरीर से निर्जीर्ण होकर औदारिक भाव के बिना एक समय रहकर दूसरे समय में पुनः औदारिक रूप से परिणत हो जाते हैं, उनका एक समय अंतरकाल उपलब्ध होता है।
अच्छा, यहाँ पे एक समय उन्होंने औदारिक भाव का क्षय किया और दूसरे समय में उन लोग औदारिक भाव ग्रहण,
औदारिक भाव के बिना रहे।
हाँ।
पहले औदारिक शरीर स्कंद रूप से था।
हाँ।
अब उसमें से विघटन हुआ, वो हम कहेंगे आहार मार्गणा जो कुछ हो, उस रूप हो गए, और बाद में किसी ने जीव ने लिया, उसी ने जीव लेना चाहिए।
हाँ,
या उस एक जीव की अपेक्षा भी हो सकते, उसने ग्रहण किया, उसमें वो पना औदारिक पना गया और उसने ग्रहण किया। उत्कृष्ट अंतरकाल अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन में लगने वाले काल के बराबर है। क्या कहा, कोई विशिष्ट स्कंध उसने दोबारा नहीं ग्रहण किया है, उसकी बात
कोई भी जीव ने ग्रहण नहीं किया,
एक जीव की अपेक्षा बात चल रही है, नाना जीवों की अपेक्षा तो नहीं है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। देखो अभी उसको बता रहे, क्योंकि जिस देव और नारकी जीव ने तिर्यंचों में उत्पन्न होकर, क्योंकि अधक कर्म किस औदारिक शरीर संबंधी होता है, तो तिर्यंचों में उत्पन्न होकर और वहां उपपाद योग द्वारा औदारिक शरीर के परमाणुओं को ग्रहण करके। उपपाद योग का अर्थ क्या है अश्विन भाई?
पहला समय
जन्म का पहला समय, उसको उपपाद जन्म नहीं कहा, उपपाद योग कहा। उपपाद जन्म तो देवनारकी में होता है और उपपाद योग तो सभी जीवों में होगा। जन्म का पहला समय वहाँ योग मिनिमम होता है, उसको उपपाद योग। हाँ जहाँ ये तो रुजुगति में भी आ सकता है।
औदारिक शरीर का ग्रहण तो औदारिक शरीर का
ग्रहण किया तो उसको रुजुगति से आया,
रुजुगति से आएगा।
हाँ, तो उपपाद योग द्वारा औदारिक शरीर के परमाणुओं को ग्रहण करके पहला समय प्रबद्ध ग्रहण किया, दूसरे समय में उनकी निर्जरा की है, यानी उसमें एक निषेक गल गया है। पूरा का समय प्रबद्ध नहीं गलता, पहले समय में जो समय प्रबद्ध ग्रहण किया उसका पहला निषेक तो उदय रूप ही कहलाएगा, दूसरे समय में वो छूट गया है, वो रहा नहीं उसके साथ, तो कहते उसकी निर्जरा की है, उसके उन परमाणुओं के अधकर्म का प्रारंभ होता है, वो निर्जरित है ना, उसको अधकर्म कहेंगे। पश्चात तीसरे समय से उसका अंतर होता है, पहले समय में ग्रहण किए, दूसरे समय में निर्जरित हुए, तभी अधकर्म कहलाएंगे। तीसरे समय में उसका अंतर होता है जो कि उत्कृष्ट रूप से आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण पुद्गल परिवर्तनों के अंतिम समय तक जाता है। अंतर की बात है, देखो अंतर किया उसका, यानी वो परमाणु फिर औदारिक शरीर रूप से नहीं हुए,
वो जीव ने ग्रहण,
हाँ उस जीव ने नहीं ग्रहण किए। पूरा पढ़ेंगे, यानी असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, उसका जो अंतर चला इतने काल तक चला। हाँ, वो असंख्यात का प्रमाण आवली का असंख्यात होगा। इसके बाद अगले समय में पहले निर्जीर्ण हुए उन औदारिक नौकर्म स्कंधों के बंध को प्राप्त होकर अधकर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल प्राप्त हो जाता है। हाँ, उस जीव ने लिया, उस जीव ने लिया, ऐसा लेना है कि
हाँ, एक जीव की अपेक्षा बात चल रही है ना, तो
हाँ, एक जीव की अपेक्षा जगन्य। इस प्रकार अधकर्म का आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण पुद्गल परिवर्तनों के जितने समय होते हैं उतना उत्कृष्ट अंतरकाल उपलब्ध होता है। इतनी विशेषता है कि इस अंतरकाल में से तीन समय न्यून करके उसका कथन करना चाहिए, क्योंकि अंतर कब हुआ, अधकर्म रूप से अंतर कब हुआ, पहले समय तो ग्रहण किया है, दूसरे समय तो निर्जीर्ण हुए हैं, निर्जीर्ण हुए उस समय तो उसको औदारिक शरीर रूप से था, और तीसरे समय में उसका वो तो अधकर्म का प्रारंभ हुआ था ना, कहाँ प्रारंभ हुआ था, तीसरे समय से उसका अंतर होता है।
तो ये जीव का तो पुद्गल परिवर्तन तो
वही मेरे काल
तक चला, क्योंकि यहाँ पे असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल गया और आवली के असंख्यात में पास पुद्गल परिवर्तन हो गए और उसके पश्चात वो जीव ने वो ग्रहण किया, तो ये जीव का जो पुद्गल परिवर्तन है वो और लंबे काल तक चलेगा।
नहीं नहीं, यही तो देखते हम, ये कुछ अलग, हाँ विशेष अर्थ में देखेंगे। अब ये पूरा पढ़ते फिर विशेष अर्थ पढ़ेंगे। क्रिया कर्म का अंतरकाल कितना है? अब क्रिया कर्म का अंतरकाल है नहीं, वो तो जीव के सम्यक्त्व का अंतर देखना पड़ेगा कि नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, निरंतर है, यानी क्रिया कर्म करने वाले जीव हमेशा होंगे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, कब होगा, वो मिथ्यात्व में आया अंतर्मुख के लिए, तीसरे में आकर फिर ऊपर गया। या उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा, ऐसा भी ले सकते हैं।
हाँ, और वापस उपशम श्रेणी में गया, वो अंतर्मुख छोटा होगा।
नहीं, उपशम श्रेणी चढ़ के वापस नीचे आया तो क्रिया कर्म चालू हो गया सातवें।
हाँ, वापस उपशम श्रेणी चढ़ा तो अंतर्मुख छोटा हो जाएगा ना।
वो अंतर कहाँ होता है, वो काल होगा
क्रिया कर्म। अच्छा, अंतर भी हुआ।
आपको अंतर ही देखना है ना, बस ऊपर श्रेणी में रखना है इसको। समझ में? देखो, क्रिया कर्म तो सातवें गुण स्थान तक होता है, आठ नौ दस ग्यारह, फिर दस नौ या दस नौ ही नहीं। क्रिया कर्म का मिनिमम अंतर कैसे होगा?
दो बार श्रेणी चढ़ा था, एक बार श्रेणी चढ़ के उतरा तो क्रिया कर्म चालू हुआ, और दूसरी बार श्रेणी चढ़ा तो अंतर हो गया, और वापस पीछे उतरा तो अंतर वापस क्रिया कर्म चालू हो गया। सो एक ही भाव में दो बार श्रेणी चढ़ा के उतरेगा वो अंतर बहुत कम हो जाएगा।
नहीं, देखो देखो, क्रिया कर्म का अंतर कैसे घटित कर सकते हैं?
इधर मिथ्यात्व में तो
देखो, उपशम श्रेणी चढ़ने लगा, सातवें तक तो क्रिया कर्म था, आठवें के पहले भाग में तो मरण नहीं है, तो उसमें मर कर देह में गया तो क्रिया कर्म चालू हो गया, पूरी श्रेणी की भी जरूरत नहीं है।
हाँ, देव ने उत्पन्न करा,
क्योंकि पहले अंतर्मूर्त में मरण नहीं है ना आठवें के। हाँ, जो हाँ। निद्रा प्रचला का जो बंध विच्छुत्ति का काल है, उसके बाद उसने देव में जन्म लिया, वो अंतर्मूर्त छोटा होगा। पहले समय मरण नहीं है, मरण नहीं है जाते समय। हाँ, इसलिए अंतर्मूर्त लेना वहां पर। आठवें का पहला अंतर्मूर्त छोड़कर देव मर गया और देव में उत्पन्न हुआ। हाँ, पहले अंतर्मूर्त में हाँ उत्तर समय होता है, परंतु वो हमको क्रियाकर्म का अंतर देखना है। क्योंकि ये क्यों कहते हैं, हम तो निद्रा प्रतला की विच्छुत्ति होते ही मरण होता है ऐसा लेते हैं, महाबंध में उसके बाद भी अंतर्मूर्त का अंतर लिया। निद्रा प्रचला की बंध विच्छुत्ति के बाद भी अंतर्मूर्त के बाद मरता है, ये हमने महाधौला में बहुत बार पढ़ा है। यानी वो सब मिलकर छोटा अंतर्मूर्त है, तब जाके वो मर सकता है, वो अंतर छोटा होगा। और क्रियाकर्म का अंतर काल ऐसे भी घटित करेंगे, नीचे के गुण स्थान में आए फिर ऊपर चढ़ा, उसका काल बड़ा होगा थोड़ा।
वो बड़ा होता
है। पूरे आठवें गुण स्थान का वो पहला भाग लिया ना, पूरे समान सात भाग किए, फिर भी एक अंतर्मूर्त छोड़ दिया, उसका संख्यात्वा भाग है। और ये यहाँ वो अंतर्मूर्त छोटा ही होगा, देव में जाते ही क्रियाकर्म शुरू हुआ। उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन है, यानी एक बार सम्यक्त्व से छूट गया है, मिथ्यात्व में आ गया है, अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक घूमा है, अंत में जाके वो संयमी होकर श्रेणी चढ़ने वाला है, तब तक वो मिथ्यात्व में रहा, इसलिए कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन। इसी प्रकार इरियापद कर्म और तप कर्म का भी अंतरकाल कहना चाहिए, क्योंकि इरियापद का ने पहले भव में उसने उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा था, यानी सम्यक्त के साथ संयमी हुआ और श्रेणी चढ़कर उतरा, इरियापद का अंतर शुरू हुआ। फिर कालांतर से मिथ्यात्व में गए, जाकर इतना लंबा घूमा, अंतिम भव में जब क्षपक श्रेणी चढ़ेगा तब इरियापद करेगा, तो उसका इतना लंबा अंतर। तपकर्म के लिए भी पहले भव में वो संयमी हुआ, फिर संयम छूटकर मिथ्यात्व में गया, और फिर अंतिम भव में संयम प्राप्त किया, तब तपकर्म शुरू हुआ, फिर उस एक जीव की अपेक्षा। अर्ध पुद्गल परावर्तन अनंत काल है। कैसा कैसा स्वरूप है ना, विशेषार्थ। यहाँ ओघ से छह कर्मों के अंतरकाल का विचार किया गया, प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का नाना जीव और एक जीव दोनों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं होता, यह स्पष्ट ही है। ये तो समझ में आवे ऐसी बात, क्योंकि संसारस्थ जीव के कोई न कोई योग और किसी न किसी कर्म का बंध उदय और सत्व निरंतर पाया जाता है। बंध उदय और सत्व भी लिया, इसलिए अयोगी को भी ले लिया। यद्यपि अयोगी केवली गुणस्थान में योग का अभाव हो जाता है, पर यह जीव पुनः सयोगी नहीं होता। अंतर कब घटित होगा? योग का अयोग होकर फिर संयोग होता तो अंतर होता, इसलिए अंतरकाल के प्रकरण में इसका ग्रहण नहीं होता। अधकर्म का नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं होता, क्योंकि अनंत एकेंद्रीय जीव तथा असंख्यात व संख्यात दूसरे जीव औदारिक शरीर नौकर्म स्कंधों को निरंतर ग्रहण कर उन्हें औदारिक शरीर रूप से परिणमाते रहते हैं। इस कर्म का एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल कितना होता है, इसका संयुक्तिक मूल में ही विचार किया गया है। उत्कृष्ट अंतरकाल बतलाते समय वह असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण बतलाया है। मात्र इस काल में से तीन समय कम किए गए हैं। ये तीन समय प्रारंभ के दो समय और अंत का एक समय लेना चाहिए। प्रारंभ के दो समय ने उसने ग्रहण किया है,
थोड़ा
दूसरे समय में छोड़ा है, तीसरे समय से अंतर चालू हो गया था उसका, तो पहले दो समय लिए। अंत का एक समय ने उसमें फिर ग्रहण किए ना, एक मिनट,
और पीछे छोड़े तो उसका अधकर्म का काल चालू।
नहीं नहीं, ग्रहण किए तो भी उसको अधकर्म कहेंगे कि नहीं कहेंगे?
नहीं, तो जो छोड़ते हैं उसको अधकर्म का है ना, औदारिक शरीर का जो
औदारिक शरीर रूप से परिणमित हो जाता है।
हाँ।
तो ग्रहण किया और परिणाम आया, उसका एक समय ले लिया उन्होंने। उसको उन्होंने ये नहीं देखो देखो, हम जब कहते हैं ना जीव ने एक समय में कोई ग्रहण किए और उसको फिर दोबारा जो वही परमाणु उसी का स्पर्श रस गंध वर्ण के साथ ग्रहण करेगा, अब यहाँ तो कहते कि
असंख्यात पुद्गल परिवर्तन चला गया तो भी वो जीव ने वो स्कंध ग्रहण नहीं किया।
हाँ।
तो ये पुद्गल परिवर्तन और ये पुद्गल परिवर्तन जो हम लोग देखते हैं
वही सेम ही है, परंतु उसको अधकर्म रूप से उसकी कुछ विचार अलग हो रहा है उसको।
अच्छा, एक पुद्गल परिवर्तन गया तो वही, पर हमने देखा ना एक पुद्गल परिवर्तन में जब भी वो परमाणु सेम रूप से ग्रहण होता है तो स्कंद भी सेम होगा ना, तो यहाँ तो
परमाणु वही चाहिए, वही परमाणु उसको फिर ग्रहण करके छोड़ना भी चाहिए ना। एक समय में जो लौट, एक समय प्रबद्ध उसने छोड़ा है।
ये पुद्गल परिवर्तन और इसमें कुछ मेरे को कुछ कंफ्यूजन हो,
नहीं कुछ तो है परंतु जो हमें स्ट्राइक नहीं हो रहा है।
हाँ। ख्याल में नहीं आ रहा, क्योंकि एक पुद्गल परिवर्तन में हम लोग सेम परमाणु का ग्रहण होता है तो वो पुद्गल परिवर्तन खत्म हो जाता है। सेम परमाणु का ग्रहण करके वापस छोड़ना वो पुद्गल परिवर्तन,
सेम का बहुत बार ग्रहण होता है, एक बार नहीं है, ग्रहित ग्रहण तो अनेकों बार है,
पर वो परमाणु का सेम पर्याय के
पर्याय नहीं है, पूरा लॉट हो गया, परंतु इसमें कुछ छूट रहा है अपना, वो ख्याल में नहीं आ रहा है। देखो तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब रहे शेष तीन कर्म, अभी उसमें ऐसा ही ले सकते कि वही वो एक निषेक के बिना बाकी उसने ग्रहण किए हो गया, ऐसा ही हो सकता है। ग्रहित का होना चाहिए और उसके स्पर्श रस गंध वर्ण वैसे चाहिए, अभी उसकी बात छोड़ते हैं क्योंकि वो पुद्गल परिवर्तन के साथ उसका फिट अधक कर्म का नहीं बैठ रहा है अपने को। अब ये अब रहे तीन कर्म, कौन से रहे?
क्रियापद कर्म और क्रिया कर्म। हाँ।
यानी क्रिया कर्म तप कर्म इरियापद। सो नाना जीवों की अपेक्षा उनका भी अंतरकाल नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इन कर्मों के धारक जीव निरंतर पाए जाते। इरियापद में भी केवली को लिया। इनका एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, क्योंकि सम्यक्त्व सम्यक्त्व का जगन्य अंतरकालीनी क्रिया कर्म का अंतर, संयम और उपशांत कषाय गुणस्थान का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त ही पाया जाता है। यानी इरियापद का जघन्य अंतर कैसे होगा, श्रेणी चढ़ के उतरा और फिर दोबारा श्रेणी चढ़ी तो जघन्य अंतर हुआ। संयम का जघन्य अंतर, संयम में से नीचे आया और फिर संयम प्राप्त किया, और सम्यक्त्व का अंतर नीचे आकर फिर उसने प्राप्त किया। या क्रियाकर्म में हमने आठवें गुणस्थान में भी मरकर देव में भेजा था, है ना। इनका उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि अभी एक वाक्य रिपीट हुआ है उसको निकाल दो, यह पुरानी उसमें लिखे ना, यहां से निकालो। क्योंकि के आगे किसी जीव के सम्यक तो संयम और उपशांत कषाय कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, जघन्य अंतर, ये रिपीट कुछ है, ये उल्टा पुल्टा वाक्य हुआ है। अब ये क्योंकि के बाद क्योंकि तक, हाँ वो करेक्ट करके, क्योंकि उनको भेजा था करेक्ट करके, हाँ तो पुराने पुस्तकों में ये करेक्शन करना है। पुराने पुस्तकों में क्योंकि बाद निकालो और आगे के नेक्स्ट लाइन के क्योंकि तक का मिटा दो। हाँ देखो क्या क्या निकालना है, किसी जीव के यानी अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि यहां से पहले ब्रैकेट करो, किसी जीव के सम्यक्त्व संयम और उपशांत कषाय कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है क्योंकि, यहां तक मिटा दो। अब हम सही पढ़ेंगे, ऊपर का क्योंकि और नीचे के लाइन में किसी जीव के सम्यक्त्व संयम और उपशांत कषाय गुणस्थान को प्राप्त होने के बाद वह इन्हें यदि अधिक से अधिक काल तक न प्राप्त हो तो कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक नहीं प्राप्त होता। ये समझ में आई बात, इसके बाद वह सम्यक्त्व और संयम को अवश्य ही प्राप्त होता है, और यदि अनुकूलता हो तो उपशम श्रेणी पर भी तब आरोहण करता है। इस प्रकार यह सामान्य से छह कर्मों का अंतरकाल है। ये ओग की अपेक्षा बताया, सामान्य से ने ओग की अपेक्षा, अब हर एक मार्गणा में बताएंगे।
यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा, अनुकूलता हो तो उपशम श्रेणी, अनुकूलता
उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, यक्ष पक्ष श्रेणी चढ़ेगा,
उत्कृष्ट अंतर तक
उपशम श्रेणी का अगर अंतर करना है तो हो जाएगा, पर इरियापद तो क्षपक में भी होता है,
क्षपक को लेना चाहिए ना, क्योंकि उत्कृष्ट अंतर लिखना देखना है।
अन्य जो अगर आप करना है तो वो भी हो सकता है, इतना ही बताना है उनको। यानी उपशम श्रेणी भी इतने अंतर से चढ़ी जा सकती है, बस इतना बताना है। यहाँ वो विषय नहीं है, परंतु प्रसंग के अनुसार उन्होंने उपशम श्रेणी की भी बात उठाई यहाँ पर। अब हम गतियों में देखेंगे। तो मेरा प्रश्न है मनीषा बेन, आप जरा विचार करके बताना, नरक गति में प्रयोग कर्म होगा एक जीव की अपेक्षा, जघन्य काल कितना होगा, काल की बात पूछ रहे हैं, 10,000 वर्ष जघन्य आयु, और उत्कृष्ट काल कितना होगा, 33,000, जघन्य अंतर कितना होगा। नहीं एक जीव की अपेक्षा, नाना जीव की अपेक्षा अंतर ही नहीं होगा। नरक से निकला और
अभी मार्गणा नरक से चालू है, तो
नरक गति के मार्गणा की अपेक्षा दोबारा नरक में कब आएगा, मार्गणा ही छूट जाएगी उसकी। मार्गणा का अंतर अगर देखना है तो अंतर्मूर्त से लेकर अनंत काल तक नरक में नहीं गया मार्गणा, और उस मार्गणा में रहते हुए वो उसका अंतर नहीं होगा, मार्गणा में रहते हुए अंतर नहीं होगा। अभी यहाँ क्या कहता देखो, मैंने पहले नरक गति का पूछा है, उसकी बात बराबर है, परंतु अगर हम वो मार्गना चालू रखना है और उस नरक गति का अंतर हमने पूछा, एक अंतर्मूर्त का भोग किया उसने और फिर वापस यहाँ, अब वो बात यहाँ नहीं लागू होगी। नरक में रहते हुए प्रयोग कर्म का अंतर नहीं होगा, समवदान का अंतर नहीं होगा, एक जीव की अपेक्षा बात कर रहे हैं इस तरह से, क्रिया कर्म का अंतर होगा कि नहीं होगा, समय तो छूट गया वापस में।
कम
उसका जघन्य अंतर अंतर्मूर्त उत्कृष्ट उसकी जो बड़ी स्थिति, अब यहाँ पढ़ेंगे देखो, नरक गति में नारकियों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, यानी नरक में रहते हुए ये योग से रहित नहीं होगा और कर्म से रहित नहीं होगा, निरंतर है। क्रिया कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं निरंतर है, हमेशा ही समय दृष्टि जीव नारकी हो गए। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, यानी अंतर्मूर्त के लिए मिथ्या तो में गया, और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 33 सागर है, क्योंकि 28 कर्मों की सत्ता वाला कोई एक तीर्यंश या मनुष्य सादी मिथ्या दृष्टि लिया, नीचे सातवीं पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न हुआ, वहां 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, पश्चात विश्राम करके और विशुद्ध होकर सम्यक्त को प्राप्त हुआ, क्रिया कर्म की आदि दिखाई दी, पश्चात मिथ्यात्व को प्राप्त होकर उसने क्रिया कर्म का अंतर किया, इन्हें अंतर्मूर्त में फिर मिथ्यात्व में गया, फिर मिथ्यात्व में ही रहा, अंत में मिथ्यात्व के साथ ही आयु का बंध करने के बाद फिर उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। उपशम सम्यक्त को क्यों कहा लक्ष्मी? उपशम समय को क्यों लिया, वेदक समय को क्यों नहीं लिया, बोलो। बोलो
28 की सत्ता नष्ट हो गई है।
देखो देखो, मिथ्यात्व में आया तो पल्ले के असंख्यात्व भाग में उद्वेलना पूरी हो जाती है, ये तो 33 सागर तक मिथ्यात्व में रहा है। तो 33 सागर तो बहुत बड़ा काल है,
सकता तो बहुत सकता है,
तो उसके मिथ्या तो रूप सब हो गई सकता, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति की सत्ता नष्ट हो गई, अभी वो मिथ्या तो की एक सत्ता वाला है, इसलिए उसने उपशम सम्यक तो प्राप्त किया। इस प्रकार क्रिया कर्म का अंतरकाल प्राप्त होता है, तदनंतर मिथ्या तो को प्राप्त होकर मरकर तीर्यंच हो गया, आयु का बंध इसलिए पहले किया क्योंकि उसको तो
लंबा
मिथ्यात्व में आयु का बंध तो होता है उसका, वो तो नक्की है, पहले आयु का बंध किया उसने, बाद में औपशमिक समय तो प्राप्त करके फिर गिरकर मिथ्यात्व में आया और फिर मरा। इस प्रकार क्रिया कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल 6 अंतर्मूर्त, शुरुआत के 5 और लास्ट में 2, कम 33 सागर उपलब्ध होता है। इसी प्रकार सातवीं पृथ्वी में अंतरकाल होता है तथा इसी प्रकार प्रारंभ की 6 पृथ्वियों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि इनमें एक जीव की अपेक्षा क्रिया कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल क्रम से 5 अंतर्मूर्त कम 1 सागर, 5 अंतर्मूर्त कम 3 सागर, 5 अंतर्मूर्त कम 7 सागर, 5 अंतर्मूर्त कम 10 सागर, 5 अंतर्मूर्त कम 17 सागर और 5 अंतर्मूर्त कम 22 सागर है। 5 क्यों लिया, वहाँ 6 लिए क्योंकि वहाँ सम्यक तो प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में गया था, और यहाँ सम्यक तो के अंतिम अंतर्मूर्त में सम्यक दृष्टि होकर सम्यक तो के साथ जा सकता है, या उसको संसाधन में ले जाकर उसको भेजना ऊपर तो भी हो सकता है, उपशम सम्यक तो प्राप्त करके ही उसका अंतर समाप्त हुआ। ऊपर की 6 पृथ्वी में
संसाधन में मरण है,
मरण है ना?
नरक
में नहीं जाता। अब हम यही रुकते हैं। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हूँ।